सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में हमने शाल्व के वध की कथा सुनी थी। श्री कृष्ण ने शाल्व का वध करके द्वारका को भय मुक्त किया था, जिस कारण वे युद्ध के समय पांडवों के पास उपस्थित नहीं थे। अब श्री कृष्ण और आए हुए सभी परिवार जन वापस अपनी अपनी राजधानी को लौट गए हैं। वहीं युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित दैवत वन में निवास करने के लिए प्रवेश कर गए हैं। आज पांडवों से मिलने के लिए दैवत वन में महर्षि मार्कंडेय जी आए हैं। चलिए जानते हैं आगे की कथा। महर्षि को आया देख राजा युधिष्ठिर ने उनका यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर को उनके भाइयों और द्रौपदी सहित देखकर महर्षि मार्कंडेय जी को श्री रामचंद्र जी की याद आ गई और वे तपस्वियों के बीच बैठे हुए मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब धर्मराज ने उदासीन मन से महर्षि से पूछा, मुनि, यहाँ उपस्थित सभी तपस्वी मेरी दशा देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सभी के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यों मुस्कुरा रहे हैं? महर्षि मार्कंडेय ने उत्तर देते हुए कहा, तात, ना तो मैं हर्षित हो रहा हूं और ना ही तुम्हारी दशा पर मुस्कुरा ही रहा हूं। आज तुम्हारे ऊपर आई हुई यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का स्मरण हो गया है। प्राचीन काल की बात है, रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से हाथ में धनुष लिए माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए आए थे। उस समय श्रैमुख पर्वत के शिखर पर मैंने उनके दर्शन किए थे। श्री राम निष्पाप थे, तो भी अपने पिता की आज्ञा को धर्म समझकर वन में निवास करने के लिए आए थे। उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। उनका अनुभव भी महान था और वे भी हर युद्ध में विजयी होते थे। इसीलिए अपने बल को स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। अपने आसपास देखो राजन, ये सभी प्राणी विधाता के विधान से अपनी अपनी योनि के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने बल को स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। राजन, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस वनवास की अवधि को पूरा करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देकर महर्षि मार्कंडेय जी ने उनसे विदा ली और उत्तर दिशा की ओर चले गए। जिस समय पांडव दैवत वन में निवास कर रहे थे, उस समय वह वन ब्राह्मणों से भर गया था। उस समय दैवत वन ब्रह्म लोक के समान शोभा पा रहा था। एक दिन संध्या उपासना के समय दल्भ के पुत्र महर्षि बक ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सब और वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। संपूर्ण जगत के ब्राह्मण यहाँ आकर आपसे मिल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए राजन, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल जाते हैं तो वे दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर अपने शत्रु को ऐसे भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। राजन, तुम्हारे हृदय में ब्राह्मणों के लिए सदा उत्तम भाव रहता है, इसीलिए सब लोगों में तुम्हारा यश विख्यात हो रहा है। इस प्रकार युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और सभी प्रसन्नता से भर गए। एक दिन शाम के समय दुख और शोक में डूबे हुए सभी पांडव और द्रौपदी बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैं समझती हूँ पापी दुर्योधन के मन में तनिक भी दुख नहीं होगा। उस नीच बुद्धि वाले दुष्ट आत्मा ने आपके साथ धोखा करके आपको वन में भेज दिया, किंतु उसे इस बात का थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी इतने कटु वचन सुनाए। उस सभा में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण को छोड़कर सभी की आंखों में अश्रु थे। केवल इन्हीं की आंखों में ना दुख था और ना पश्चाताप। निश्चय ही आपके मन में क्रोध नहीं है, क्योंकि अपने भाइयों और मुझे इस कष्ट में पड़ा देखकर आपके हृदय में व्यथा नहीं होती है। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी भी प्रकार का क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सबका वध किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज। अपनी बात को समझाते हुए द्रौपदी ने कहा, महाराज, इस विषय में प्रहलाद और विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। असुरों के स्वामी दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा, पिताश्री, क्षमा और तेज में क्षमा श्रेष्ठ है या तेज? मेरा यह संशय दूर कीजिए, मैं आपके आदेश का यथावत पालन करूंगा। पितामह प्रहलाद ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, ना तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और ना ही क्षमा। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भाई, बंधु, शत्रु और उदासीन व्यक्ति भी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्वक बर्ताव नहीं करता, इसीलिए सदा क्षमा विद्वानों के लिए भी वर्जित है। इसी प्रकार द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर को हर बार क्षमा करने वालों के दोषों के विषय में सुनाया और कहा, महाराज, अब क्षमा ना करने वाले व्यक्तियों के दोषों के विषय में सुनिए। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत्त होकर योग्य और अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है और साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। यह आवश्यक है महाराज कि व्यक्ति समय समय पर आवश्यकता अनुसार कभी कोमल कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। जो मौका देखकर कोमल हो जाता है और उपयुक्त समय आने पर कठोर भी बन जाता है, वह इहलोक और परलोक में सुख पाता है। ऐसा कहकर पितामह प्रहलाद ने क्षमा के योग्य अवसर भी बताए हैं। पितामह प्रहलाद कहते हैं कि अनजाने में की गई गलती को क्षमा कर देना चाहिए। जिसने पहले कभी उपकार किया हो उससे यदि कोई अपराध हो भी जाए तो उसे पहले उपकार को याद करके क्षमा कर देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। द्रौपदी कहती है, महाराज, राजा धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी हैं और आपका अहित करने वाले हैं। उनके प्रति तेज का प्रयोग कीजिए। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही सफल भूपाल है। क्या राजा युधिष्ठिर द्रौपदी की इन बातों को उचित मानते हैं? जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है MySutradhar। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।